नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। सात राज्यों में 13 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में 7 के परिणाम घोषित। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में 1 सीट जीती, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने 2 और भाजपा ने 1 सीट पर जीत हासिल की। पश्चिम बंगाल में रायगंज, बागदा और राणाघाट दक्षिण सीट तृणमूल कांग्रेस के खाते में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम मुंबई में 29,000 करोड़ रूपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। चालू वित्त वर्ष में शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 19.5% बढ़कर 11 जुलाई तक 5,74,000 करोड़ रुपए तक पहुंचा। और लंदन में विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में आज शाम जैस्मिन पाओलिनी का मुकाबला बारबोरा क्रिजिस्कोवा से होगा। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर बुधवार को हुए उपचुनाव में अब तक 7 के नतीजे प्राप्त हो चुके हैं। पंजाब में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने जालंधर पश्चिम आरक्षित विधानसभा सीट जीत ली है। हिमाचल प्रदेश से सत्तासीन कांग्रेस ने 2 सीटों पर कब्जा कर लिया है और भाजपा ने 1 सीट जीती है। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस ने रायगंज, राणाघाट दक्षिण और बागदा सीट जीती है। अभी 6 विधानसभा सीटों के लिए मतगणना जारी है। पंजाब में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में जालंधर पश्चिम आरक्षित सीट जीती है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मोहिंदर भगत ने जालंधर पश्चिम आरक्षित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 37,325 मतों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की है। उन्हें कुल 58.38% वोट मिले और बहुकोणीय मुकाबले में भाजपा उम्मीदवार शीतल अंगुराल को हराया। भाजपा को 17,921 मत प्राप्त हुए, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार 16,757 मतों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। इस परिणाम ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को राहत की सांस दी है, जो कि प्रचार के दौरान लगातार निर्वाचन क्षेत्र में डटे रहे। शिशु शर्मा शांतल, आकाशवाणी समाचार, जालंधर।
हिमाचल प्रदेश के 3 विधानसभा क्षेत्रों देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ में हुए उपचुनाव के परिणाम आज घोषित कर दिए गए। एक रिपोर्ट।
हिमाचल प्रदेश में देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ उपचुनाव की 3 सीटों के लिए मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशियों के बीच रहा, जिसमें देहरा और नालागढ़ में सत्तासीन कांग्रेस ने जीत हासिल की, जबकि हमीरपुर विधानसभा सीट पर भाजपा ने जीत दर्ज की। देहरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी व मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर ने 9,399 मतों से जीत दर्ज की। नालागढ़ से कांग्रेस उम्मीदवार हरदीप सिंह बावा 8,990 वोट से विजयी रहे, जबकि हमीरपुर सीट से भाजपा प्रत्याशी आशीष शर्मा ने 1,571 मतों से जीत दर्ज की। उपचुनाव नतीजों के साथ ही प्रदेश विधानसभा में अब सत्तारूढ़ कांग्रेस के विधायकों की संख्या 40 हो गई है, जबकि भाजपा विधायकों की संख्या 28 हो गई है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
पश्चिम बंगाल में रायगंज विधानसभा सीट से कृष्णा कल्याणी ने जीत हासिल की है। बिहार में 7वें दौर की गिनती खत्म होने के बाद निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह 1,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। तमिलनाडु में विक्रवाणी विधानसभा उपचुनाव में डीएमके भारी अंतर से आगे चल रही है। डीएमके के अन्नयूर शिवा अपने पीएमके प्रतिद्वंदी सी अंबुमणि से 40,000 से ज्यादा वोटों से आगे हैं। विक्रवाणी विधानसभा उपचुनाव में डीएमके भारी अंतर से आगे चल रही है। डीएमके के अन्नयूर शिवा को अपने पीएमके प्रतिद्वंदी सी अंबुमणि से 30,000 से ज्यादा वोटों का अंतर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई के गोरेगांव में 29,400 करोड़ रूपये से अधिक की सड़क, रेलवे और बंदरगाह परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे और आधारशिला रखेंगे। एक रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नवी मुंबई के तुर्भे में कल्याण यार रिमॉडलिंग और गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल की आधारशिला भी रखेंगे। वे लोकमान्य तिलक टर्मिनल पर नए प्लेटफॉर्म और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल स्टेशन पर 10 और 11 नंबर के प्लेटफॉर्म का विस्तार राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वह लगभग 5,600 करोड़ लागत मूल्य की मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना भी लॉन्च करेंगे। यह एक परिवर्तनकारी इंटर्नशिप कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य 18 से 30 वर्ष के युवाओं को कौशल वृद्धि और उद्योग प्रदर्शन के अवसर प्रदान करना है। प्रधानमंत्री INS टावर्स का उद्घाटन करने के लिए मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी सचिवालय का भी दौरा करेंगे। भावना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार देश के सीमावर्ती गांवों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्थानीय निवासियों को रोजगार के अवसर प्रदान करने और सीमावर्ती गांवों से पलायन को रोकने के लिए सहभागिता बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री शाह ने कहा कि सीमावर्ती गांवों के आसपास तैनात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और सेना को सहकारी समितियों के माध्यम से स्थानीय कृषि और हस्तशिल्प उत्पादों की खरीद को प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आसपास के गांवों के निवासियों को सेना और सीएएपीएफ के लिए उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलना चाहिए। बैठक में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और लद्दाख के 19 जिलों के 46 ब्लॉक में चयनित गांवों के व्यापक विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना है। कार्यक्रम का उद्देश्य इन गांवों का व्यापक विकास करना है ताकि लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सके और लोगों का पलायन रोका जा सके। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन योजनाएं अपने इच्छित उद्देश्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर रही हैं। नई दिल्ली में कल राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ श्री नड्डा ने इन योजनाओं की समीक्षा की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि अब तक लगभग 34 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं और इनसे लगभग 7 करोड़ से अधिक अस्पताल में प्रवेश की सुविधा प्रदान की गई है। दो दिवसीय रोबोट प्रतियोगिता जीडी रोबोकॉन इंडिया 2024 नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में चल रही है। प्रसार भारती और आईआईटी दिल्ली इस कार्यक्रम की मेजबानी कर रहे हैं। 45 से अधिक कॉलेज, संस्थान और विश्वविद्यालयों के 750 से अधिक छात्र इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता के दौरान रोबोट तय समय के भीतर जटिल कार्यों को निष्पादित करने के लिए एक दूसरे का सामना करेंगे। जीडी रोबोकॉन की विजेता टीम अंतर्राष्ट्रीय एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन रोबोकॉन 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी, जो वियतनाम के क्वांग निन्ह में होगा। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्यों के समुद्र और जलमार्ग यातायात समितियों की बैठक की अध्यक्षता करेगा। मंत्रालय ने कहा है कि सम्मेलन का लक्ष्य देशभर में समुद्र और जलमार्ग के माध्यम से यातायात के विकास कार्यक्रम को सुनिश्चित करना है। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए प्रत्यक्ष कर के रूप में 6,45,000 करोड़ रुपए से अधिक कर एकत्र किए हैं। इस महीने की 11 तारीख तक 70,902 करोड़ रुपए की कर वापसी की जा चुकी है। आयकर विभाग ने बताया है कि कुल संग्रह राशि में 2,65,336 करोड़ रुपए कॉरपोरेट कर, 3,61,862 करोड़ रुपए व्यक्तिगत आयकर और 1,426 करोड़ रुपए अन्य कर शामिल हैं। पूर्ण प्रत्यक्ष कर संग्रह में लगभग 20% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो 5,74,000 करोड़ रुपए से अधिक है। हरियाणा में जिंद जिले के सफेदों की अपराध जांच एजेंसी ने करीब 9 क्विंटल नशीले पदार्थ के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसकी कीमत 37 से 40 लाख रुपए के बीच है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान पंजाब के संगरूर निवासी सुंदरपाल उर्फ सिंदर और रिंकू सिंह के रूप में हुई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @yarnewshindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है और अब खेल खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
लंदन में विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में आज जैस्मीन पावलिनी का सामना बारबोरा क्राइजिकोवा से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। 7 बार के विजेता सर्बिया के नोवाक जोकोविच और मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्काराज पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। खिताबी मुकाबला कल खेला जाएगा। उधर जर्मनी में ब्रावो ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स फाइनल में आज एन श्रीराम बालाजी और इक्वाडोर के गोंजालो एस्कोबार नीदरलैंड्स के सैंडर एरेंट्स और रॉबिन हॉस से मुकाबला करेंगे। यूरो कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताबी मैच देर रात 12:30 बर्लिन में स्पेन और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा। स्पेन इस चैंपियनशिप को रिकॉर्ड चौथी बार जीतने का प्रयास करेगा, वहीं इंग्लैंड लगातार दूसरी बार यूरो कप के फाइनल में खेलेगा। दूसरी तरफ कोपा अमेरिका फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताबी मुकाबला अर्जेंटीना और कोलंबिया के बीच होगा। ये मैच सोमवार की सुबह 5:30 से शुरू होगा। इधर भारत और जिम्बाब्वे के बीच चौथा T20 क्रिकेट मैच आज शाम भारतीय समय के अनुसार 4:30 हरारे में खेला जाएगा। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 2-1 से आगे है और सीरीज का 5वां तथा अंतिम मैच कल खेला जाएगा।
मौसम विभाग ने अगले 5 दिन के दौरान गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, केरल और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 4 दिन तेलंगाना, मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भी तेज बारिश हो सकती है। मौसम कार्यालय ने तटीय आंध्र प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मूसलाधार वर्षा की भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए मुंबई और ठाणे के लिए रेड अलर्ट जारी किया है और आज अलग अलग इलाकों में अत्यधिक वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आज सुबह मुंबई और पुणे के कुछ हिस्सों में बारिश हुई। सेंट्रल और हार्बर रेलवे लाइन पर लोकल ट्रेनें देरी से चल रही हैं। मूसलाधार बारिश के कारण शहर के निचले इलाकों में जलभराव हो गया। मौसम विभाग ने मुंबई के समुद्र में 3.69 मीटर तक ऊंचे ज्वार की चेतावनी जारी की है और लोगों को बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है। महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र के पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिले में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। केरल में मूसलाधार बारिश जारी रहने के कारण मौसम विभाग ने कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 6 अन्य जिले येलो अलर्ट पर हैं। कोझिकोड में 2-मंजिला इमारत आंशिक रूप से ढह गई है। वर्षा के कारण कई इलाकों में यातायात प्रभावित है। केरल, कर्नाटक और लक्षद्वीप तटों पर मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी दी गई है। नेपाल में गोताखोरों सहित सेना और पुलिस कर्मियों की टीमों ने त्रिशूली नदी में गिरे बस यात्रियों की खोज दूसरे दिन भी जारी रखी। हादसे में लापता व्यक्तियों के परिवारों ने मांग की है कि आवश्यक प्रौद्योगिकी और उपकरणों का उपयोग करके खोज अभियान को और अधिक प्रभावी बनाया जाना चाहिए। कल सुबह सिमलताल में भूस्खलन के कारण 60 यात्रियों से भरी 2 बसें त्रिशूली नदी में बह गई थीं। इनमें एक काठमांडू से गौर जा रही थी और दूसरी बीरगंज से काठमांडू जा रही थी। भारतीय सेना ने लद्दाख में करगिल विजय दिवस की रजत जयंती से पहले करगिल हेलीपैड पर अपनी सेना को जाने नामक एक शानदार हथियार और उपकरण प्रदर्शनी आयोजित की। 8 माउंटेन डिवीजन के जीओसी मेजर जनरल सचिन मलिक इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। इस आयोजन में 121 इन्फेंट्री ब्रिगेड के ब्रिगेडियर प्रतीक पाराशर और अन्य सेनाधिकारी भी शामिल हुए। इस प्रदर्शनी को देखने के लिए विभिन्न स्कूलों, करगिल डिग्री कॉलेज जांसकार और एनसीसी कैडेटों सहित अनेक लोग उपस्थित हुए। इस दौरान भारतीय सेना और वायुसेना के नवीनतम हथियारों और उपकरणों का प्रदर्शन किया गया। अमरनाथ यात्रा जारी है। पिछले 14 दिन में 2,80,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन किए। शनिवार को 4,669 यात्रियों का एक और जत्था घाटी के लिए रवाना हुआ। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता वाले श्री अमरनाथ देश श्राइन बोर्ड के अधिकारियों ने कहा है कि 29 जून को यात्रा शुरू होने के बाद से 2,80,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने यात्रा की है। शनिवार को 4,669 यात्रियों का एक और जत्था भगवती नगर यात्री निवास से 2 सुरक्षा काफिलों में घाटी के लिए रवाना हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 7 राज्यों में 13 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में 7 के परिणाम घोषित। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में 1 सीट जीती। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने 2 और भाजपा ने 1 सीट पर जीत हासिल की। पश्चिम बंगाल में रायगंज, बागदा और राणाघाट दक्षिण सीट तृणमूल कांग्रेस के खाते में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम मुंबई में 29,000 करोड़ रूपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। चालू वित्त वर्ष में शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 19.5% बढ़कर 11 जुलाई तक 5,74,000 करोड़ रूपये तक पहुंचा। और लंदन में विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में आज शाम जैस्मीन पावलिनी का मुकाबला बारबोरा क्रिजिस्कोवा से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।